सबको आप के द्वारा ज्ञान का वरदान प्राप्त हो की भावना से सात तीर्थ अयोध्या में बैठकर गोमट का जीवकांड सार का स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। सिद्धम शुद्धम पढ़नीय चंद्रमकलंकम गुणरायणी तनुदयम् जीवस्तपरोवणम् पुरुषम्। जीवद्रव्य के विशेष विस्तार को कहने के लिए तीन स्वरूपणाएं आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के द्वारा कही गई हैं। उन तीन स्वरूपणाओं में सबसे पहले गुण जीवापज्जति आदि कह करके और स्वरूपनाओं का शुभारंभ किया। पहली स्वरूपना गुणस्थान है कि जिनमें जीव द्रव्य का विस्तार से वर्णन किया गया है। कल आपने 14 गुण स्थानों में से प्रथम गुण स्थान मिथ्यात्व गुण स्थान का वर्णन सुना जाना पढ़ा है। दस नंबर सात के माध्यम से जाना मिथ्यात्व के उदय से जो मिथ्यात्व रूप परिणाम आत्मा के होते हैं उससे सत्य तत्वों के प्रति अश्रद्धान होता है और जो गलत चीजें हैं असत्य हैं उन पर श्रद्धान होता है उसको मिथ्यात्व कहा है और उन भावों को मिथ्यात्व गुणिस्थान कहा है जिन भावों से मिथ्यात्व गुणिस्थान बनता है और मिथ्यात्व रूप परिणत होने वाला जीव मिथ्या दृष्टि कहलाता है। इस मिथ्यात्व के पांच भेद बताए एकांत विपरीत विनय संशय और अज्ञान। इनमें भ्रमण करके इनका पालन करते हुए जीव अनादिकाल से संसार के अंदर परिभ्रमण करता है क्योंकि मिथ्यात्व के समान इस संसार के अंदर कोई भी वस्तु कोई भी चीज दुखकारी नहीं। जैसा कि समंतवत स्वामी ने कहा न सम्यक्त समम किंचित त्रयी काले त्रिजगत्यपि त्रेयो त्रेयस्य मिथ्यात्व समं नान्यत् तनुभृताम्। क्या कहते हैं आचार्य देव कि संसार के अंदर सम्यक्त के समान कोई त्रेय वस्तु यानी हितकारी कल्याणकारी वस्तु नहीं है और मिथ्यात्व के समान कोई अहितकारी चीज नहीं है क्योंकि मिथ्यात्व का सेवन करने से जीव निगोदिया जीव की पर्याय भोगी धारण कर लेता है जहाँ एक सांस में 18 बार जन्म मरण करना ही उसकी नियति होती है। इसलिए मिथ्यात्व के स्वरूप को समझ करके और अपने को मिथ्यात्व से दूर रहना चाहिए। मिथ्यात्व कोई अलग से कोई आने वाली वस्तु नहीं है। हम अपने ही द्वारा अपने परिणामों को चाहे तो मिथ्या रूप कर सकते हैं। गलत धारणा बनाने से मिथ्यात्व आ जाता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम चले जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्व पदार्थ आदि पर श्रद्धान करना बस यही सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन मात्र त्रिधातु देखने अर्थ में जैसे आंख की रोशनी अच्छी होती है तो सब चीजें ठीक ठीक दिखती हैं उसी प्रकार से आत्मदृष्टि आत्मा की दृष्टि एकदम उज्जवल समीचीन होती है तो सारी तत्व पदार्थ अस्थिकाय और द्रव्य सब कुछ एकदम समीचीन लगते हैं और भगवान जिनेंद्र की वाणी से अतिरिक्त अपने को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो मिथ्यात्व गुणिस्थान को समझने का यही अभिप्राय है। अब आगे हम चलते हैं साधन गुण स्थान में। अब मिथ्यात्व के तो बहुत तरह से इसको वर्णन किया जा सकता है। आज कितने लोग कुल देवता को मानने लगे हैं। यहाँ तक कि हमने कई लोगों को ऐसा सुना कि कितने ही लोग, कितनी कन्याएं पेड़ के साथ फेरे लगा के शादी कर लेती हैं। ये सब क्या है? ये मिथ्यात है। लोग नवरात्रों में कुमारी कन्याओं को जिमाने लगते हैं। ये सब क्या है? ये मिथ्या परिणति है, गलत भ्रांति है, और कोई अलग से मिथ्या तो नहीं आता। अपनी धारणाओं को मिथ्या रूप बना लेने से ही मिथ्या गुणिस्थान बन जाता है। चलिए आप चलते हैं हम दूसरे गुणिस्थान पर। दूसरा गुणिस्थान क्या नाम है इसका? सा साधन। गाथा नंबर 8 है, तो पढ़िएगा। आदिमतम तो थावली तिवारे से अनंत को तो एक ताश ज्यादा पढ़ेंगे सामंतु। आदिमतम तद्धा समया तो धावली तिवा से अनंतरुदयातो नाद्यतमोत्थितासनातो। आदिम सम्यक स्वात्वा आ समयता तडावली रितिवा से अनान्य सरोदयात नासित सम्यक इति शासनास्तः साधन मूल। इसको शासन भी है और असली नाम है इसका साधन। आसाधना सहित को साधन कहते हैं। आसाधना माने गिराधना, अपमान, त्यागना, यानी जब सम्यक्त की विराधना होती है और जीव मिथ्यात्व तक पहुंचता नहीं तो उसके बीच का काल जो छोटा सा है वह कहलाता है सा साधन। तब इस गाथा के अर्थ को आप समझिएगा कि आदिम सम्मत अर्थात आदिम माने प्रथमोक्षम सम्यक्त, अथवा जो इसके अंदर वा शब्द है आदिम सम्यक्त वा शब्द का ग्रहण किया जो, इसलिए द्वितीयोक्षम सम्यक्त के अंतर मुहूर्त काल में से जब जघन्य एक समय तथा उत्कृष्ट छह आवली काल शेष रहे उतने काल में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी के भी उदय आने से सम्यक्त की विराधना होती है। और उस सम्यक्त की विराधना होने पर सम्यक दर्शन गुण की जो अव्यक्त अतत्व श्रद्धांत रूप परिणति होती है उसको शासन या साधन गुणिस्थान कहते हैं। अब सबसे पहले समझना है कि साधन गुणिस्थान का काल केवल अंतर मुहूर्त है, जघन्य काल भी अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल भी अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त का मतलब क्या हुआ? एक समय से लेकर के और 48 मिनट के अंदर उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त हुआ 48 मिनट, और जघन्य अंतर मुहूर्त क्या हुआ? एक आवली। एक आवली किसको कहते हैं? हमने ऐसे किया उंगली से एक बार उंगली घुमाई इतने में असंख्यात समय हो गए, आंख झपकी एक आवली हो गई, ऐसी छह आवली मात्र काल के शेष रहने पर जब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लो। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लो क्या है? जो अनंत अनंत भवों का बंद कराने वाली, जैसे अनंत जन्मों का क्रोध का बंधान बंद किया किसने? कमठ ने। अनंतानुबंधी क्रोध उसके 6 महीने के अंदर भी उसकी कषाय नहीं शांत हुई और मरुभूति के साथ जन्म जन्मांतर तक बदला लेने की भावना करता रहा और एक हाथ से ताली बजाता रहा। इधर मरुभूति का जीव उसने कभी भी बदला लेने की भावना नहीं रखी तो वो एक दिन जाकर भगवान पार्श्वनाथ बन गए। अगर दोनों तरफ से चलता जाता तो वो भी भगवान नहीं बन पाते, और वो भगवान बने तो बने, उन्होंने अनंतानुबंधी कषाय करने वाले कमट के मन को भी आखिर परिवर्तित कर दिया। यानी कि आखिरी में जब समर नाम के ज्योतिषी देव के रूप में उसने भगवान सारनाथ पर उत्तर भी दिया, तब नाग और नागिन ने आकर के धर्मेंद्र पद्मावती के रूप में भगवान के उत्तर को दूर करने का अपना कर्तव्य निभाया और भगवान का उत्तर दूर हुआ। उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जहाँ केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान आज हरिक्षेत्र कहा जाता है और वहां उनके समोसरण में उस समय कमट भी आ गया और उसने अपना सारा भय छोड़ दिया। ये तो एक कहानी है, लेकिन इसके माध्यम से आपको सिद्धांत समझना है कि जब ऐसी कसाय मन के अंदर आती है तो जो सदाचार रूप परिणाम होते हैं, जो सम्यक रूप परिणाम होते हैं, उनकी विराधना हो जाती है। माने मन खराब हुआ, भाई ऊपर की पहचान, ये तो अंदर की बात है। ऊपर की पहचान क्या है? किसी से लड़ाई हो गई तो मन खराब हो जाता है। मंदिर के अंदर भी जाकर के अशांति में मन नहीं लगता, पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता। ये तो बाहर की पहचान ऐसी हुई कि क्रोध मान माया या लोभ जब मन के अंदर भरा होता है तो व्यक्ति का अच्छे कार्य में मन नहीं लगता, सत्संग में मन नहीं लगता। तो उस बात को कहा कि सासाधन गुणिस्थान बनता कैसे? 14 सीढ़ियां हैं नीचे से लेके ऊपर तक। पहली सीढ़ी मिथ्यात्व की है, जिसमें व्यक्ति गलत सिद्धान कर लेता है और अनंत संसार में परिभ्रमण करने के लिए तैयार रहता है। यानी उस सीढ़ी से जब चाहे जब गिर करके अथाह समुद्र में गिर सकता है और वो निगोद की पर्याय तक में जा सकता है। जब दूसरी सीढ़ी करते हैं तो सासाधन गुणिस्थान उसका नाम है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मिथ्यात्व से कोई सासाधन गुणिस्थान में नहीं जाएगा। ये सासाधन गुणिस्थान कब बनता है? ऊपर से नीचे गिरने वाले, कोई सम्यक दृष्टि है और वो मिथ्यात्व में आने वाला है। तो जितनी देर में मिथ्यात्व में आया, तो अंतर मुहूर्त का ऐसा समय होता है जब कोई ना कोई कषाय उसके उदय में आ जाती है और उससे उसके सम्यक की विराधना हो जाती है, तब वो मिथ्यात्व में। इसके लिए टीकाकारों ने कहा कि सम्मत रयण कव्य सिहरादो मिच्छ भूमि सम विमुहो, यानी सम्यक रूपी एक रत्न शिखर है। की जानकारी के लिए इस विषय को दिया है कि अनादि मिथ्या दृष्टि कोई जीव है। देखो, हम सब संसार में अनादि काल से भ्रमण कर रहे हैं। हम ये हमें नहीं पता है कि अनादि काल से हम मिथ्या दृष्टि थे कि सम्यक दृष्टि थे। जिसको जीवन में कभी भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ उसको कहते हैं अनादि मिथ्या दृष्टि, और जिसको कभी सम्यक दर्शन होकर के छूट गया, दोबारा से कभी हुआ, पुनः वह मिथ्यात्व में गया, फिर उसने सम्यक दर्शन प्राप्त करने की कोशिश की, तो वो कहलाता सादी मिथ्यात्व। सादी माने जिसको कभी पहले सम्यक दर्शन हो गया। तो जो अनादि मिथ्या दृष्टि है वह सम्यक की ओर पड़ता है, सबसे पहले उसका सम्यक दर्शन कहलाता है प्रथमोपम सम्यक। और उस सम्यक को प्राप्त करने में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और एक मिथ्या प्रकृति, इन पांच प्रकृतियों के उपशम से ही वो प्रथमोपम सम्यक दर्शन होता है। और जो सादी मिथ्या दृष्टि है उसके जो है चारों कथाए अनंतानुबंधी की मिथ्या और सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन सात प्रकृतियों के उपशम से उसको प्रथमोक्तम सम्यक दर्शन हुआ करता है। हम ये सम्यक दर्शन प्रथमोक्तम सम्यक तो एक बार किसी जीव को उत्पन्न हो करके समाप्त हो जाए, ये नियम है। एक बार प्रथमोक्तम सम्यक दर्शन होगा तो अंतर मुहूर्त के बाद वह छूटे ही छूटेगा, यानी मिथ्यात्व में आ ही आएगा। उसके बाद चाहे वो सर्वोत्तम सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, चाहे तीसरे गुण स्थान में जाकर मिश्र में आ जाए, लेकिन एक बात तो छूटता ही है। पुनः संसार वर्ष की आयु वाले कर्म भूमिया मनुष्य तिगंचों में उसी भाव में वह हो नहीं सकता प्रथमोत्तम सम्यक दर्शन, क्योंकि इसका अंतराल जो है पल्लवपम के असंख्यातिक भाग प्रमाण है। ये बात सिद्धांत की दृष्टि से समझना, यानी हम सब आज वर्तमान में सम्यक दृष्टि है। इस बात का आपको कैसे आपको पहचान हो, इस बात की सच्चे देवता गुरु पर श्रद्धान होना। तो प्रथमोत्तम सम्यक दर्शन हो करके टूटने के बाद जब सम्यक दर्शन होता है तो क्षयोत्तम सम्यक दर्शन होता है। स्थायी सम्यक दर्शन इस पंचम काल में किसी को भी नहीं हो सकता। तो हम सब क्या है, क्षयोत्तम सम्यक दृष्टि है, समझे ना। क्षयोत्तम सम्यक दृष्टि की पहचान ये है कि देवसाज गुरु पर सत्थान करेंगे, किंतु उसमें सम्यक प्रकृति के उदय के कारण कभी कभी मंदिर के प्रति, भगवान के प्रति, ये मेरे हैं, शांतिनाथ भगवान शांति करने वाले हैं, आदिनाथ भगवान ऐसा करने वाले हैं, पारसनाथ भगवान संकट समाप्त करने वाले हैं, ऐसे भाव आने से थोड़ा बहुत दोष उत्पन्न होता है, लेकिन सम्यक दर्शन कभी भी छूटता नहीं। तो इसलिए अपने को इस पंचम काल के अंदर सम्यक दर्शन जो गुरुओं के निमित्त से, मंदिर के निमित्त से, भगवान के निमित्त से, पूर्व जन्म के पुण्य के उदय से जो क्षयोत्तम सम्यक दर्शन मिला है उसको छोड़ना नहीं है, उसको दृढ़ रखना है। आज मैंने आपको साधन सम्यक की बात बताई कि जिसमें सम्यक दर्शन की आसाधना होती है, विराधना होती है, वह कहलाता है साधन सम्यक्त्व। और साधन सम्यक्त्व से सही जीव साधन गुणस्थान वर्ती कहलाता है, यानी द्वितीय गुणस्थान वर्ती। और उसके पश्चात हम एक एक गुणस्थानों की ओर जब चलेंगे, एक प्रश्न हुआ कि संसार के अंदर सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है, संसार के अंदर सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है, आप में से कोई बताएंगे सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है। हाँ, इतना सुंदर बताया क्योंकि शशि आपने जो है ज्ञानमती माता जी के कुल में जन्म लिया है, तो जरूर जरूर गुरुओं के मुख से सुना ही होगा। इसके लिए आया किम दुर्लभम जन्म प्राप्तेदम भवति किम च कर्तव्यम आत्महित महित संग त्यागो राग गुरु वचने। लोक में ही सबसे दुर्लभ वस्तु क्या, तो आपने बताया मनुष्य योनि में जन्म पाना ये सबसे दुर्लभ है, दुर्लभ है दुर्लभ से चेतन बोधि ज्ञान पाना। और मनुष्य जन्म को भी पाकर यदि बोधि यानी ज्ञान का लाभ हो गया, सम्यक दर्शन का लाभ हो गया, तो उसको पाने का सबसे बड़ा सदुपयोग है, सबसे बड़ा लाभ है। अब उसको पा करके करना क्या चाहिए, करें किम कर्तव्यम, उसको पा करके क्या करना चाहिए। तो आचार्य देव ने पुनः आगे कहा आत्महित महित संगत जागो राग गुरु वचने। उस मनुष्य जन्म को पा करके आत्मा का हित करना और क्या नहीं करना, अहितकारी संगति कभी दुर्जन लोगों की संगति नहीं करना, एवं परिग्रह माने संसार के परिग्रह में अत्यधिक मूर्छा नहीं करना, अति लोभ ये भी कर लूं ये भी इकट्ठा कर लूं ऐसा अति परिग्रह का संचय नहीं करना। और चौथी बात बताई कि गुरुवचने रागस्य, गुरुवचनों में राग करना, क्योंकि गुरु कभी अहितकारी बात नहीं बता सकते। गुरुओं के वचन ऐसे वचन हैं कि जो प्राणी मात्र का हित करने वाले हैं। यदि सच्चे गुरु हैं तो प्राणी मात्र के हित करने वाले ही वचन बोलेंगे। जैसे मिश्री सर आगे से खाई जाए, पीछे से खाई जाए, टुकड़े करके खाई जाए, बड़ा टुकड़ा मुंह में रखा जाए, रुचि से खाए, चाहे किसी के द्वारा जबरदस्ती मुंह में डाली जाए, लेकिन मिश्री तो मिश्री है, मीठी रहेगी। वो मुख में जाने के बाद अपना मीठा ही फल प्रदान करेगी। ऐसे धर्म, सत्संगति, गुरु के वचन, ये मिठी मिश्री के समान सदैव हितकारी फल को प्रदान करने वाले हैं। इसलिए हमें इन गुणस्थानों का वर्णन जान करके और जो हमारे लिए अहितकारी कदम है उनसे हट करके उन गुणस्थानों को हमें प्राप्त नहीं करना, क्योंकि गुण मतलब आगे आगे बढ़ना, सीढ़ियों को चढ़ना। ऐसे 14 सीढ़ी बना करके हमने आपको गुणस्थान दिखाए थे कि ये तो नीचे के हैं जिनमें फंस करके ये जीव जो है अपने जीवन को पतन के गर्त में डालता है, और जब गुरुओं की सत्संगति करता है तो उसे अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, अर्थात हे वह भी प्राणी सत्संगति क्या नहीं कर सकती। सत्संगति के बल पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब एक बार जा करके विदेश में एक अंग्रेज के यहाँ ठहरे, तो उस अंग्रेज का बेटा महात्मा गांधी की संगति में आकर उसने मांसाहार छोड़ दिया। और महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जब उस अंग्रेज ने जाना कि इस व्यक्ति की संगति से मेरा बेटा जो है बदल रहा है, तो उन्होंने महात्मा गांधी को निकाल दिया अपने घर से। लेकिन गांधी को निकाल दिया घर से, पर गांधी की जो छाप पड़ गई थी उनके पुत्र के ऊपर, वह छाप नहीं निकली। और उसने भारत में भी आकर के गांधी जी को ढूंढा और उन्होंने महात्मा गांधी से कहा कि आपका मेरे घर के अंदर ठहरना मेरे लिए कितना भारी उपयोगी हो गया। मैं अब समझ सका कि भारतीय संस्कृति जो है निरामिष, शाकाहारी भोजन करना कितना अच्छा है। हम दूसरों के प्राण लेकर के जब अपने पेट को भरते हैं, तो वह पश्चिमी सभ्यता है जहाँ पर कर्म सिद्धांत कोई नहीं जानता, जहाँ सत्संगति क्या है ये नहीं जानते, बस केवल जो पैतृक चीजें चली आ रही हैं उसी का लोग अनुसरण करते हैं। तो हमें भारतीय संस्कृति के साथ जैन संस्कृति मिली है जो जितेंद्रियता को बतलाती है, जो कर्म सत्रों पर विजय प्राप्त करने की विधि बताती है। ऐसे जिनेंद्र भगवान जिन्होंने कर्मों को जीता इसलिए वो जिन कहलाए, और हम सब जिन के उपासक होने के कारण जैन कहलाए। जैन धर्म हमारी कोई बपौती नहीं है, जैन धर्म को पाकर हम सौभाग्यशाली हैं। हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करोड़े, जैन धर्म हमसे महान नहीं बना है, हम जैन कुल में जन्म लेकर के महान बने हैं। तो जितेंद्रियता को सीख करके हमें भगवान महावीर के मार्ग पर चलना है, जिनका आज 3650वां निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा है। आज राजधानी दिल्ली के अंदर 108 साधु एकत्रित हुए और हम सबने पारस जिनवाणी चैनल के माध्यम से देखा कि लाल किला मैदान दिल्ली से एक शंखनाद हुआ और सारे साधुओं ने पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी को इस अवसर पर याद किया। बार बार वो अपने मंच से, अपने माइक से कह रहे थे कि आज गणी ज्ञानमती, एक साधु ने तो यहाँ तक कहा कि ज्ञानमती माता के समाज पर इतने उपकार हैं, अगर हम उनकी सोने की मूर्ति बना करके पूजा करने लग जाएं तो भी कम है। सोचो आप कि कितना आप सबका पुण्य है कि आपके अवर प्रांत के अंदर उन्होंने जन्म लिया, आपने उनके कुल में जन्म लिया, आज जिनके ऊपर सारा साधु समूह गर्व कर रहे। तो ऐसे गुरु की छत्र छाया में रहकर आप सब सोमठ जीव कांड ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस दूसरी गाथा के माध्यम से आपने जाना, कि सम्यक्ति की विराधना करने से यह गुण स्थान बनता है, हमें सम्यक्ति की विराधना नहीं करना है और आगे ये गुण स्थानों के लक्षण जान करके अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करना है। यही आज के अध्याय का सार है। नमो स्वप्राणि स्वाध्याय निष्ठा पंचांग सुतवक्ति गाय।